बहुत प्यारी सूरत पूरी हुई और अब एक और खूबसूरत सूरत, सूरत मोमिन शुरू होती है। 18वें पारे में सूरत मोमिनून थी जमा की, उसमें इज्तमाई चीज़ें थी, इज्तमाई किरदार के कद अफलहल मोमिनून से लेके शुरू की आयात पूरी देखें। और अगर आपको भूला नहीं है तो उधर हमने तामीर सीरत का टॉपिक लिया था 18वें पारे में। यहाँ सूरत मोमिन है फ़र्द वाहिद। आप अगर अंधेरों में हैं, ख़राब लोगों में हैं, आपके इर्द गिर्द वाले सिद्दीक तो छोड़ दीजिए, सालेह भी नहीं है, सुन्नत नफिल तो छोड़ दीजिए, फ़राइज़ भी उनके पूरे नहीं, जिनके अकायद में झोल है या जिनके मामलात में गड़बड़े हैं, जो अपने इर्द गिर्द नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करके हर गलत काम करके कहते हैं अल्लाह गफूर रहीम है, फिर आप क्या करें? मैं क्या करूं, मजबूरी है, मेरा माहौल नहीं। आइए सीखते हैं मर्द मोमिन से सूरत मोमिन में। अपनी ज़ाती इस्लाह के लिए बेहतरीन सूरत है ये, 85 आयतें इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, गाफिरिज़्ज़म्बि वक़ाबिलित्तौबि शदीदिल इक़ाब, ज़िद तौली ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। हरूफ मुक़त्तआत में से हामीम। इस किताब का नाजिल फरमाना इस अल्लाह की तरफ से है जो गालिब और दाना है, गुनाह का बख्शने वाला और तौबा कबूल फरमाने वाला, सख्त अजाब देने वाला, अल्लाह अकबर, इनाम और कुदरत वाला, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी की तरफ वापस लौटना है, इलैहिल मसीर। ज़रा अल्लाह तआला की शान देखिए, गाफिर ज़म्ब आया इधर, ज़ुनूब नहीं आया। यानी इस आयत में आपकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए गाइडलाइन है, ज़म्ब वाहिद है, एक गुना, यानी सारे नहीं, एक गुना भी वही बख्शेगा और कभी कभी एक ही गुना बंदे को डबो देगा। फिर काबिल तौब, बे इख्तियारी गलतियों को माफ़ करने वाला, गाफिर ज़म्ब कौन है, अपनी रहमत से गुनाहों को ढांपने वाला। काबिल तौब कौन है, बे इख्तियारी गलतियों को माफ़ करने वाला। शदीद इल्क़ाब, फासिकों को सख्त सज़ा देने वाला। और ज़िद तौल, अपने बंदों पर कसीर एहसान करने वाला, यानी एक एक बंदा उसकी निगाहों में है। आप अपने गुनाहों को हल्का ना जानिए, इतनी मखलूक में कैसे पता चलेगा उसको कि मैंने भी कुछ किया नहीं, या भीड़ नहीं है, या एक एक चीज़ पे नज़र है अल्लाह की। लेकिन लोग क्या करते हैं, मा युजादिलु फी आयातिल्लाहिल्लज़ीना कफरू, अल्लाह तआला की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं। बस इनका शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में न डाले। कौम नूह ने और इनके बाद के गिरोहों ने भी झुठलाया था, और हर उम्मत ने अपने रसूल को गिरफ्तार कर लेने का इरादा किया। हाईलाइट कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के घर का घिराव नहीं किया गया था, बाकी अम्बिया कराम के साथ भी कुछ इसी किस्म के मामलात हुए। और बाद में देख लीजिए, सलफ सालहीन, आइमा कराम, मुहद्दिसीन, अक्सर को जेलों में डाल दिया गया। तो याद रखिए, अच्छा बंदा ज़रूरी नहीं कि हर एक को अच्छा भी लगे। अल्लाह आजमा रहा होता है उनको भी, इस्तकामत के दर्जे पे फाइज करके देखना चाहता है। और ये जो मुकामे सिद्दीकियत मिलता है ना, ये मुखालफतों में से छन के, साफ सुथरे निथर के, अपने किरदार को बुलंद करने के बाद मिलता है। और अल्लाह ताला हमें इसी दर्जे के काबिल बना दे आसानियों के साथ। फिर क्या हुआ, उन लोगों ने अपने वक्त के नबियों के साथ क्या किया, वहम्मत कुल्लु उम्मतिम भी रसूलिहिम, और बातिल के ज़रिए झूठे बहस मुबासे किए ताकि इनसे हक़ को बिगाड़ दें, बस मैंने इन्हें पकड़ लिया। ज़रा नोट कीजिए, बस मैंने इन्हें पकड़ लिया, वाहिद के सीगे में, यानी सूरत में आपको इंडिविजुअलिज्म मिलेगा। सो मेरी तरफ से कैसी हुई सज़ा, इस तरह आपके रब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया कि वो दोस्ती हैं। अल्लाह ताला आंखें खोल दे, नबी भी सामने मौजूद हो और बंदे को हिदायत ना मिले, इससे बड़ी महरूमी और क्या होगी। अब आगे देखिए, दूसरी बार तذکرہ आ रहा है फरिश्तों का, अर्शियों की दुआएं फरशियों के हक में, कैसे, अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श वमन हौलहू, अर्श के उठाने वाले, ये फरिश्तों में एक आला दर्जे के फरिश्ते हैं, आज चार हैं, क़यामत के दिन आठ होंगे। और इसके पास वाले फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम के साथ साथ करते हैं, और उस पर ईमान रखते हैं और वो ईमान वालों के लिए इस्तग़फार करते हैं, कहते हैं कि हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस इन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें, और तू इन्हें दोज़ख़ के अज़ाब से भी बचा ले। किन के लिए दुआएं कर रहे हैं अर्शी? कौन से फर्शियों के लिए? नंबर एक, जो ईमान लाएं फिर तौबा करें और तेरे रास्ते पे चले। क्या पता चला, गुनाहों को छोड़ना, सच्चे दिल से तौबा करना और सही रास्ते पे चलना फरिश्तों की दुआएं लेने का जरिया है। अब फरिश्तों की दुआएं सुनिए और अल्लाह करे ये सारी दुआएं आपके हक में भी लग जाएं और आप अपने अपनी जगहों पे, अपने अपने घरों में बैठे हुए फरिश्तों की ये दुआएं लें, क्योंकि आप बड़ी मोहब्बत से, खामोशी से, बग़ैर किसी डिस्ट्रैक्शन के, बग़ैर उठे, बग़ैर कोई और काम किए अल्लाह का ये कलाम सुन रहे हैं। क्या दुआएं हैं? रब्बना वादखिलहुम जन्नात, ए हमारे रब, तू इन्हें हमेश की वाली जन्नतों में ले जा जिनका तूने इनसे वादा किया है, और इनके बाप दादा और बीवी और औलादों में से भी इन सब को जो नेक अमल करें, लिखिए जो नेक अमल हों, उनको मन सलख मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन तू ग़ालिब और बाहिकमत है।
और इन्हें बुराइयों से भी महफूज रख। हक तो ये है कि उस दिन तूने जिसे बुराइयों से बचा लिया, इस पर तूने रहमत कर दी, और बहुत बड़ी कामयाबी तो यही है।
किसके लिए दुआ हो रही है? आपको, आपकी औलादों और आपके वालदेन से मिलाने की दुआएं हो रही हैं, जो इस काबिल हो, यानी जन्नत में तो पहुंच चुके हों। जो जन्नत से बाहर रह गए ना, उसको दुआएं नहीं लगेंगी। हाँ, जन्नत में चले गए तो दर्जों के फर्क के साथ अल्लाह मिलाएगा। सही अहादीस से पता चलता है कि जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं अपनी औलाद को भी देखूँ, मिलूँ। अब हो सकता है कि औलाद कभी नीचे के दर्जे में हो, अभी ऊपर ना आई हो, तो अल्लाह ताला औलाद से मिलाने के लिए उसको नीचे नहीं बल्कि औलाद को ऊपर ले आएगा। अब आप खुद से सवाल कीजिए, आप क्या चाहते हैं? आपकी वजह से आपके बच्चे ऊपर आए या आप अपने बच्चों की वजह से ऊपर बुलाई जाएं? फितरत का तकाजा है कि इंसान औलाद को हर चीज़ में अपने से आगे देखना चाहता है। तो अगर आपके बच्चे नेकियों में आपसे आगे हैं तो शुक्र कीजिए और उनकी बात मान लीजिए। ये ना कहें कि तुम कल के बच्चे, तुम्हें क्या पता, और मैं तो वही करूँगा जो मैं करता था या मैं करती थी। कभी कभी अल्लाह ताला बच्चों को पहले दीन दे देता है या ज़्यादा दीन दे देता है या प्योर दीन देता है, और माजरत के साथ हमारा देसी कल्चर रिवायती दीन पर होता है, जबकि अल्लाह हमारी नस्लों को कभी सच्चे प्योर दीन पे ले आता है। आप देखेंगे उनके अमल साफ सुथरे निखरे होते हैं, और आज तो ऐसे लगता है कि नमाजियों में से सफ़ेद दाढ़ियों से ज़्यादा काली दाढ़ियों वाले हैं। अल्लाह ऐसे प्यारे बच्चों की हिफाजतें फरमाए जो दीन में आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही फिर आगे एक और बात कह दी गई, इन्नल्लज़ीन कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इन्हें आवाज़ दी जाएगी कि यकीनन अल्लाह का तुमसे बेजार होना इससे बहुत ज़्यादा है जो तुम बेजार होते थे अपने जी से जब तुम ईमान की तरफ बुलाए जाते थे फिर कुफर करने लगते थे। मोहम्मद अरबी का सेशन याद कर लीजिए, मक्का वालों को कितना गुस्सा आता था जब नबी सल्लम उनको दावत देते थे। अल्लाह ताला कहते हैं उस वक़्त तुम्हें गुस्सा आता था, अल्लाह को तुम पे उससे ज़्यादा गुस्सा आता था। वो कहेंगे हमारे परवरदिगार, तूने हमें दो बार मारा और दो ही बार जिंदा किया, अब हम अपने गुनाहों के इकरारी हैं, तो क्या अब कोई राह निकलने की भी है? ये अज़ाब तुम्हें इसलिए है कि जब सिर्फ अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, अगर इसके साथ किसी को शरीक किया जाता था तो तुम मान लेते थे। बस अब फैसला अल्लाह बुलंद व बुजुर्ग का ही है, वही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाते हैं और तुम्हारे लिए आसमान से रोजी उतारता है। और बात यह है कि वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, नसीहत तो सिर्फ वही हासिल करते हैं जो अल्लाह की तरफ रजू करते हैं। फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तुम अल्लाह को पुकारते रहो इसके लिए दीन को खालिस करके, गो काफिर बुरा माने, बुलंद दर्जों वाला अर्श का मालिक वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वही नाजिल फरमाता है। क्यों? इसलिए कि लियुनज़िरा यौम तलाक, ताकि वो मुलाकात के दिन से डराए। देखिए लफ्ज़ तलाक, तोय से पढ़ेंगे तो जुदाई और ते से पढ़ेंगे तो मुलाकात, तो इससे कितनी ज़रूरत है कि हम अपने मखारिज को समझें, अरबी सीखें एटलीस्ट वॉवल्स को उसको सही करके पढ़ें, और क़यामत के नामों में से एक नाम यौमुत तलाक, क्योंकि उस दिन मुलाकातें होंगी जिस्मों की रूहों से, प्यारों की प्यारों से मुलाकातें होंगी, इसी तरह अम्बिया की अपनी कौमों से मुलाकातें होंगी। अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी की मुलाकात करवा दे और हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब लोगों में हों। क्या होगा उस दिन? यौमहुम बारिज़ून ला यख्फा अलल्लाहि मिन्हुम शैय़ुन, जिस दिन सब लोग जाहिर हो जाएंगे, इनकी कोई चीज़ अल्लाह से पोशीदा ना रहेगी। अब अगला जुमला देखिए, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाही है? कोई जवाब नहीं है, ही कोई नहीं जो जवाब दे, तो खुद ही जवाब आ रहा है, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, फक्त अल्लाह वाहिद कहार की, अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, आज हर नफ्स को इसकी कमाई का बदला दिया जाएगा, आज किसी किस्म का जुल्म नहीं, यकीनन अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। महसूस कीजिए किसकी मजाल के वो अल्लाह के सामने बड़ाई का दावा करे। तो आइए गौर व फिक्र करते हैं आयत नंबर 1 से ऑनवर्ड। गाफिर ज़म्ब बिकाबिल तौब, इस आयत पर ये कहिए, ए गुनाह बख्शने वाले मेरे गुनाह बख्श दे, ए तौबा कबूल करने वाले मेरी तौबा कबूल कर ले। फरिश्तों की पैरवी करते हुए दीगर मोमिनों के हक़ में वैसे ही दुआ करें जैसे आप अपने लिए करते हैं। चलिए हम भी ज़रा गैर हाज़रीन के लिए दुआ करें। अल्लाह हमारे सारे प्यारों पे अपना रहम फरमा, हमारे माँ बाप पे, हमारे भाई बहनों पे, हमारे साथियों पे, हमारे दीन के काम करने वालों पे, सारे तालिब इल्मों पे, सारे उस्तादों पे और सारे ज़िम्मेदारान पे अपनी रहमत फरमा। अल्लाह सब की परेशानियाँ दूर कर दे, बीमारियाँ दूर कर दे। अल्लाह इन सब के बच्चों को इनकी आँखों की ठंडक बना, और जो बीमार है बच्चे उनको सेहत और आफ़ियत अता फरमा। इसी तरह अपने ऐबों और गुनाहों की निशानदेही करके अल्लाह ताला से तौबा और इस्तग़फ़ार करें। कुरान से रहनुमाई, इस्लाम के दुश्मनों को दुनिया की जो फरावानी हासिल है इससे धोखा मत खाइए, बातिल और खोटी दलीलों से मत उलझें, हमेशा हक तक पहुंचने का इरादा करें। अगर मुकामे सिद्दीकियत पाना है बंदे पर, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत यह है कि वो इसे गुनाहों के इंजाम से बचा ले, क्योंकि इंजाम बहुत बुरा होने वाला है। आज मज़े कल बदमजगी, क्या फ़ायदा? गौर व फिक्र के गोशे, तौबा करने वाले गुनाहगार के लिए दो नेमतें, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा कर नेकी में शुमार कर ले, या फिर इसका कोई गुनाह मिटा दे जिससे इसने तौबा कर ली। यौम तलाक, मुलाकात का दिन, रोज़े क़यामत, जिस दिन हमारी रब से भी मुलाकात होगी, और अपने जैसे लोगों के से भी। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाना। बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। क्या कुछ नहीं होने वाला, इन सारी आयतों को पढ़ते हुए एक पूरा मंज़र आता है ना, कोई महफिल सजी हुई है, कोई बहुत बड़ा गेट टुगेदर है, और इतने बड़े बड़े इवेंट्स अभी हमारी ज़िंदगी में आने वाले हैं, और हम एक छोटे से इवेंट के लिए परेशान हैं। चाहे वो कोई इफ्तारी है, चाहे वो ईद पार्टी है, या कोई दावत है, किसी ने हमारे घर आना है, या हमारे घर वालों ने खाना खाना है। ये ज़िंदगी के मसले बहुत छोटे हो जाएंगे जब आप एक बड़े मसले पे नज़र रखेंगे। आगे देखिए एक और नाम क़यामत का आ रहा है, आयत 18 में, वानज़िरहुम यौम अलआसिफति ज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिर, और इन्हें बहुत ही करीब आने वाले दिन यानी क़यामत से आगाह कीजिए जबकि गम के मारे दिल हलक तक पहुंच जाएंगे और सब खामोश होंगे। जालिमों का कोई दिली दोस्त होगा ना सिफारशी के, जिसकी बात मानी जाए, वो आंखों की खयानत को और सीने की पोशीदा बातों को खूब जानता है, और अल्लाह ताला ठीक ठीक फैसला कर देगा। इसके सिवा जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो किसी चीज़ का भी फैसला नहीं कर सकते, बेशक अल्लाह ताला खूब सुनता खूब देखता है। इन अल्लाह हुवस समीउल बसीर, इस सिफत को भी अल्लाह की महसूस करें। जो सिद्दीकियत का मुकाम होता है ना उसमें कान्नक तराहु वाली कैफियत होती है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर वो कैफियत ना भी हो तो इन्नहु यराक, वो तो तुम्हें देख ही रहा है। यही चीज़ तकवा में ढलकर आपको मुझे बुरे कामों से रोकती और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक देती है। फिर आगे थोड़ा कायनात पे गौर व फिक्र, अवलम यसीरु फिल अर्दि फयन्ज़ुरु कैफ़ काना आक़िबतुल्लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम, क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं कि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे इनका नतीजा कैसा हुआ। यानी माजी से सबक सीखो, हिस्ट्री से देखो अपने बारे में कि उनके साथ जो हुआ तो तुम्हारे साथ अगर वही तुम करोगे तो क्या ना होगा। वो बाएतबार कुव्वत और ताकत के और बाएतबार जमीन में अपनी यादगारों के इनसे बहुत ज्यादा थे। कौम आद और समूद की तरफ इशारा है। बस अल्लाह ने इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया और कोई ना हुआ जो इन्हें अल्लाह के हिसाब से बचा लेता। ये इस वजह से है कि इनके पास इनके पैगंबर मौजज़े ले लेकर आते थे तो इनकार कर देते थे, बस अल्लाह इन्हें पकड़ लेता था। यकीनन वो ताकतवर और सख्त अजाब वाला है। तारीख से सबक कुरान का एक मुस्तकिल टॉपिक है, तो माजी के लोगों की बातों को दोहराने की बजाय उससे इबरत लेने की ज़रूरत है। अब आगे यहाँ से हज़रत मूसा और इसी के अंदर फिर मर्दे मोमिन का किस्सा है जिस पर ये सूरत का नाम है। वलकद अरसलना मूसा भी आयातिना व सुल्तान मुबीन, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयतों और खुली दलीलों के साथ भेजा। फिरौन हामान और कारून की तरफ, ये वजीर थे उस दौर के, तो उन्होंने कहा ये तो जादूगर और झूठा है। बस जब इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम हमारी तरफ से दीन हक लेकर आए तो उन्होंने कहा कि इसके साथ जो ईमान वाले हैं इनके लड़कों को तो मार डालो और इनकी लड़कियों को जिंदा रखो, और काफिरों की जो हीला साजी है वो गलती में है। और फिरौन ने कहा मुझे छोड़ो कि मैं मूसा को मार डालूं, और उसे चाहिए कि अपने रब को पुकारे। मुझे तो डर है कि ये कहीं तुम्हारा दीन ना बदल डाले या मुल्क में कोई बहुत बड़ा फसाद बरपा ना करे। ये जुमले नोट कीजिए, कल फिरौन को ये अंदेशा था, आज दुनिया में उसी के फॉलोअर्स और उसी की नस्लों को यही डर है कि सच्चा दीन आ गया तो इनके फैब्रिकेटेड मैन मेड दीन जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। इस सच्चे इस्लाम के आने से ये घबराते हैं, इसीलिए वो मुसलमान जो सिद्दीकियत के दर्जे पे फायज होते हैं बाज़ दफ़ा उनको टेररिस्ट और कुछ इस किस्म के नाम दे दिए जाते हैं। वक़ाल मूसा इन्नी उस्तु भी रब्बी व रब्बिकुम, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह में आता हूँ हर उस तकबर करने वाले शख्स की बुराई से जो रोज़े हिसाब पर ईमान नहीं रखता। इससे पता चलता है कि रोज़े हिसाब पर यकीन ना होना एक इंसान को फसाद बर्पा करने पे माइल करता है। अब देखिए कि मूसा फिरौन के दरबार में, फिरौन बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चारों तरफ मुखालफतें हैं, आजमाइशें हैं, और अल्लाह सच बोलने वाले हक पे चलने वालों को इसी तरह आजमा रहा होता है। इतने में अंधेरों में एक रोशनी की किरण निकलती है, और वो क्या, वकाल रजुल मोमिन मिन आलि फिरौन यक्तुम ईमानहु, और एक मोमिन शख्स ने जो फिरौन के खानदान में से था और अपना ईमान छुपाए हुए था कहा कि क्या तुम एक शख्स को महज इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर आया है। अगर वो झूठा हो तो इसका झूठ उसी पर है, और अगर वो सच्चा हो तो जिस अजाब का वो तुमसे वादा कर रहा है वो कुछ ना कुछ तो तुम पर आ पड़ेगा। अल्लाह ताला इसकी राहबरी नहीं करता जो मन हुआ मुसरिफ उन कज़ाब, जो हद से गुजर जाने वाला और झूठा हो। नोट कीजिए पारे के शुरू से लेके यहाँ तक झूठ की भी बात हो रही है, तो ज़िंदगी से झूठ निकालें ताकि सिद्दीकियत का मुकाम हासिल हो। या कौमी लकुमुल मुल्कुल यौम, ऐ मेरी कौम के लोगों आज तो बादशाह तुम्हारी है कि इस ज़मीन पर तुम गालिब हो, लेकिन अगर अल्लाह का अजाब हम पर आ गया तो कौन हमारी मदद करेगा। फिरौन बोला मैं तो तुम्हें वही राय दे रहा हूँ जो खुद देख रहा हूँ, और मैं तो तुम्हें भलाई की राह ही बतला रहा हूँ। इस मोमिन ने कहा है मेरी कौम के लोगों मुझे तो अंदेशा है कि तुम पर भी वैसा ही रोज़े बद ना आए जो और उम्मतों पर आया, जैसे उम्मत नूह की और आद और समूद और इनके बाद वालों का हाल हुआ। अल्लाह अपने बंदों पर किसी तरह का जुल्म करना नहीं चाहता। व या कौमिन यखाफ अलैकुम यौम तनाद, और ऐ मेरी कौम मुझे तुम पर क़यामत के दिन का भी डर है जिस दिन तुम पीठ फेर कर लौटोगे, तुम्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसका हादी कोई नहीं। और इससे पहले तुम्हारे पास हज़रत यूसुफ़ दलीलें लेकर आए। देखिए इससे पता चलता है कि उनको भी हिस्ट्री पता थी हज़रत यूसुफ़ के दौर तक की, फिर भी तुम इनकी लाई हुई दलील में शक व शुबा ही करते रहे, यहाँ तक कि जब इनकी वफ़ात हो गई तो कहने लगे इनके बाद तो अल्लाह किसी रसूल को भेजेगा ही नहीं। इसी तरह अल्लाह गुमराह करता है हर उस शख्स को जो हद से बढ़ जाने वाला और शक और शुबा करने वाला हो। क्या पता चला कि इस शख्स ने इनको हर अंदाज से हर तरीके से समझाया, लेकिन जब वो ना समझे, जब उनकी बात ना समझ आई, तो फिर उसने उनको आखिरत की भी खबर दे दी। इससे पता चलता है कि जितना ज़्यादा एक इंसान अल्लाह का डर दिल में रखेगा, अल्लाह ताला उसका दिल खोल देगा। इत्तकु फरासतुल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह की बुरहान से देखता है। तो याद रखिए, इस्तकामत के दर्जे पे खड़े हुए लोगों को मुकामे सिद्दीकियत में अल्लाह लेकर आता है, तो उनको एक ख़ास किस्म की फरासत दे देता है। वो इंसानों को पढ़ने लग जाते हैं, इंसान उसके बारे में क्या सोचते, लोग क्या उससे काम लेना चाह रहे, क्या झूठ सच बोल रहे हैं, ये सब कुछ खुलने लगता है। इसीलिए फिर आगे फरमाया, अल्लज़ीना युजादिलून फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तान, जो बग़ैर किसी सनद के जो इनके पास आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, अल्लाह के नज़दीक और मोमिनों के नज़दीक ये तो बहुत बड़ी बेजारी की चीज़ है। अल्लाह ताला इसी तरह हर मगरूर और सरकश के दिल पर मोहर कर देता है। क्या पता चला? आइए तदब्बुर और अमल करते हैं। आयत नंबर 18 से ऑनवर्ड, दुश्मन से हिफाजत की दुआ मांगिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आप कहेंगे हमारा कोई दुश्मन है? हमारा दुश्मन नहीं, लेकिन हक का दुश्मन कोई ना कोई होगा। और याद रखिए, सबसे बड़ा दुश्मन तो शैतान है। हक के रास्ते में ज़रूर कुछ ऐसे अड़ोड़े अटकाता है कि जिसकी वजह से इस रास्ते पे चलना आसान ना हो। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह कोई जो दीन के नाम पे अगर हमारी दुश्मनी करे तो तू हमारी हिफाजत उनसे फरमा। इसी तरह किसी आलिम या दाई का मजाक उड़ाया जा रहा हो तो आले फिरौन के मर्द मोमिन की पैरवी करते हुए उसका दिफा करें। फजूल खर्ची, झूठ और तकब्बुर और गरूर से अल्लाह की पनाह तलब कीजिए। कुरान से रहनुमाई, क़यामत के दिन किसी पर कोई जुल्म और ज़्यादती ना होगी और घबराहट की वजह से दिल हलक तक पहुँच जाएंगे। गुफ्तगू करने वाले का किरदार इसके सच्चे या झूठा होने की दलील होता है। ज़रा सा खुद को अपनी गुफ्तगू के आईने में देखिए। मोमिन हर खौफ के वक्त अल्लाह की तरफ पनाह रखता है। हम भी कहते हैं, अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं। गौर व फिक्र के गोशे, जिस तरह अल्लाह एक वक्त सबको रोजी देता है, इसी तरह एक लम्हे में सब के मुहासबे पर भी कादिर है। बस लोग समझते हैं, नहीं इतने लोगों में भला अल्लाह मुझे कैसे याद रखेगा? जी, आपको भी याद रखेगा, आपके एक एक अमल को भी अल्लाह ताला देख सकता है। देखिए, अल्लाह की तो हर सिफत ही इन्फिनिट है, इसलिए उसके बारे में तो कोई बात कहना सोचना भी गलत है। अल्लाह का इल्म कामिल और हर चीज़ पर मुहीत है, इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह से हया करे और तकवा इख्तियार करे। अबा अजदाद की गलत आदतों उतवार हिदायत की राह में रुकावट बन जाती हैं। जो शख्स हिसाबो किताब के दिन पर सच्चा ईमान न रखता हो, वह एहसान और सवाब का ख्वाहिशमंद नहीं होता और न बुराई पर खौफ खाता है। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। आगे आयत नंबर 36 से फिरौन का किस्सा कंटिन्यू होता है। वक़ाल फिरौन या हामान, फिरौन ने कहा, ए हामान, मेरे लिए एक बालाखाना बना, शायद के मैं इन दरवाज़ों तक पहुंच जाऊं जो आसमान के दरवाजे हैं, और मूसा के माबूद को झांक लूं। देखिए, फन कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मूसा का, और बेशक मैं समझता हूँ कि वो झूठा है, इल्ज़ाम तराशी। और इसी तरह फिरौन की बदकिरदारियाँ इसे भली दिखाई गईं और रहस्य रोक दिया गया, और फिरौन की हर हीला साजी तबाही ही में रही। वक़ालल्लज़ी आमन या कौम इत्तबिऊन यहदिकुम सबील और रशाद, और इस ईमानदार शख्स ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, तुम सब मेरी पैरवी करो, मैंने एक राह की तरफ तुम्हारी राहबरी करूँगा। ज़रा सा दर्द महसूस कीजिए इस शख्स का, कितना दर्द है इसके दिल में। और लिख लीजिए, जब तक आपके दिल में दर्द ना हो, आप लोगों के लिए खैर का जरिया नहीं बन सकते। इसलिए कि ये रास्ता बड़ा कठिन है, इस रास्ते पे चलने वालों को हर लिहाज से अपने आप को सिक्योर रखना पड़ेगा, वरना याद रखिए, शैतान ऐसे ऐसे काम ले लेगा आपसे कभी गलत कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। और इसका दर्द कितना, ऐ मेरी कौम, ये हयात है दुनिया, मताए फ़ानी है, यकीन मानो कि करार और हमेशगी का घर तो आखरत ही है। जिसने गुनाह किया, इसे तो बराबर बराबर ही का बदला है, और जिसने नेकी की है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, और वो ईमानदार हो, तो ये लोग जन्नत में जाएंगे और वहाँ बेशुमार रोज़ी पाएंगे। ऐ मेरी कौम, ये क्या बात है कि मैं तुम्हें निजात की तरफ बुला रहा हूँ और तुम मुझे दोजख की तरफ बुला रहे हो? ज़रा सा इस पे गौर कीजिए। व या कौमी मा लिया दूकुम इलन निजा, وتدعون نيل النار. اللہ اکبر، دیکھیے یہ ہے درد، یہ ہے صدیقیت کا مقام، مخالفتوں میں معاون بننے والا، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے آپ کو مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیا میں بے سوچے سمجھے ہاں میں ہاں ملاتی ہوں یا میں اپنی عقل بھی استعمال کرتی ہوں. اور آیت دیکھیے 41 کتنی خوبصورت آیت ہے جس پہ ہمارا نصف پارہ ہوا، بولیے الحمدللہ علی نعمت القرآن. دعا بھی کر لیجئے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ حق کے رستے پہ رکھنا اور باطل راستوں سے ہمیں دور کر دے. اور یہ سارے قصے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے اپنے دور کے تقاضوں کو بھی پہچانیں. آج اگر چاروں طرف برائی ہے تو اگر اللہ نے آپ سے کوئی خیر کا کام لینا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو روشنی کی ایک کرن بنا دے گا. سراج منیر بھی ایک ایسی ہی روشنی تھے، اور ابو بکر صدیق جیسا پیارا ساتھی پیارے نبی کے لیے بالکل اس مرتے مومن کی طرح ہی معاون بنا رہا. اللہ ہمیں دین کے کاموں میں بہترین معاونین عطا فرمائے، اور جو ہمارے پاس ہیں ان کو باقی رکھے، اور ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخش دینے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں. یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں. اب اگلا جملہ ذرا سا دل پہ رکھیے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے. اور رہ گیا تمہارا میرا معاملہ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے. یہ ہے جی خوبصورت جملہ تفویض الامر. جب حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں، جب کوئی آپ کی بات سمجھنے کو تیار نہ ہو، آپ کی بات ماننے کو تیار نہ ہو، جب آپ کی سچی دعوت کو قبول کرنے کو تیار نہ ہو، پوری کوشش کر لیں حجت تمام کر کے، اس کے بعد کہہ دیجئے وافوض امری الی اللہ، پھر اللہ آپ کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے گا. دیکھیے اس کے اس جملے پہ اللہ نے کیا عطا کیا، فبقاہ اللہ سیئات ما مکروا، بس اسے اللہ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، یعنی ان کی پلاٹنگ کامیاب نہ ہوئی، ان کے پروپیگنڈے ناکام ہو گئے. وہا کبھی آل فرعون سوء العذاب، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا. کیا فرعون نے کوئی کسر چھوڑی ہوگی اس شخص کی مخالفت کرنے کی، دیکھے میرے اوپر تنقید کر رہا ہے، میرے سسٹم کو خراب کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا اس کے خلاف پروپیگنڈے کیے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو تو بچا لیا، اور خود اپنے ہی دام میں صیاد آ گیا، فرعون خود ہی اسی میں ڈوب گیا جس میں لوگوں کو ڈبونا چاہتا تھا. حق کے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ ایسے ہوتی ہے، صدیقین کے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہے، اور جو جس درجے کا ہوگا ایمان کے حساب سے اتنی اللہ کی معاونت اس کے ساتھ ویسی ہوگی. ایمان تو تھوڑا سا، اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں ہم کہ شاید فرشتے ہی اتر آئیں گے، تو ایسا کبھی نہ ہوگا. اور فرعون کا حال کیا ہونے والا ہے، النار یوردون علیہ غدوا وعشیا، آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں. اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال، اور جبکہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے جن کے یہ تابع تھے کہیں گے ہم تو تمہارے پیروں تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ جواب دیں گے ہم تو سبھی اس آگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا. اب کیا فائدہ؟ دیکھیے جیل میں جانے کے بعد قیدی کہ مجھے معاف کر دو، میں سوری کرتا ہوں، میں گلٹی فیل کرتا ہوں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فیصلوں کے بعد اگر کوئی سفارش بھی آ جائے تو قبول نہیں کی جاتی. اب ذرا جہنم میں ان کی رونے دھونے کی پکاریں تو سنیے. وقال الذین فی النار، اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے داروغوں سے، یعنی گارڈ مین بواب، کیا کہیں گے؟ उनसे कहेंगे कि तुम ही अपने परवरदिगार से दुआ करो कि वो किसी दिन तो हमारे अजाब में कमी कर दे। वो जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल मोजज़े लेकर नहीं आए थे? वो कहेंगे क्यों नहीं। वो कहेंगे फिर तुम ही दुआ करो, और काफिरों की दुआ महज बेअसर और बेराह है, यानी मांगो ना मांगो एक बराबर। आयत 30 से तदब्बर और अमल के नुक्ते। अल्लाह की नाराज़गी और बग़ैर इल्म के बहस और तकरार करने से अल्लाह की पनाह मांगनी है। किसी गुनाहगार को तौबा की तरफ या किसी काफिर को इस्लाम की तरफ दावत दें, अपनी शफ़क़त और हिर्स का इज़हार करें। और मैं तो बेचैन हूँ ऐसी सिस्टर्स को मिलने के लिए। कब्रिस्तान की ज़्यारत करें और अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करें। कुरान से रहनुमाई। इस बात से अल्लाह की पनाह मांगें कि बुरे काम आपको भले लगने लगें। देखिए, ये अल्लाह की तरफ से ना एक सज़ा होती है, बंदे को अपना बुरा काम अच्छा और दूसरे का अच्छा काम बुरा भी लगने लगे। हम कई दफ़ा खुद पसंदी में इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि हमें अपने सिवा सारे ही गलत लगते हैं, खुद जन्नती और बाकी सारे जहन्नमी दिखते हैं। अल्लाह इस मुकाम पे आने से हमें बचा ले। पुख्ता यकीन रखें कि अल्लाह अपने औलिया को ज़मीन का वारिस बनाएगा और दुश्मनान इस्लाम को रुसवा करेगा। और औलिया कौन होते हैं, पीछे सूरह यूनुस में हम बड़ी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। रजुलन मोमिन का तरीका अपनाते हुए बेहतरीन तरीके से दूसरों को नसीहत करें और दिल में दूसरों की खैर ख्वाही को महसूस करें। गौर व फिक्र की बातें। दुनिया का फ़ायदा थोड़ा सा है, जबकि जन्नत हमेशगी का घर दारुल करार है। ये भी बहुत अहम नुक्ता है। थोड़ी सी दुनिया, छोटी सी मच्छरों के पार, उसके लिए इतना बंदा रोए। और हमेशा आला बेहतरीन ड्यूरेबल जन्नत को पाने के लिए फिर कितनी मेहनत करने की ज़रूरत होगी, इसको सोचिए। वफ़व्विद अम्री इलल्लाह, जिसने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया, फिर अल्लाह उसका साथ ज़रूर देगा। तफवीदुल अमर करने वालों के लिए फरिश्ते मददगार बन जाते हैं। यह है जी अर्शियों की मदद फरशियों के लिए। जहाँ इंसान ना हो वहाँ फरिश्ते होंगे, और जहाँ इंसान साथ ना दें वहाँ फरिश्ते साथ देंगे। अपनी कौम को गुमराह करने वाले सरबरा रोज़े क़यामत दुगने अजाब के मुस्तहक होंगे। अल्लाह ताला गुमराहियों से भी बचाए और गुमराह होने से भी बचाए और दूसरों को गुमराह करने से भी बचाए। आगे 51 से अब बड़े प्यारे वादे हैं अल्लाह के। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु फिल हयाति दुनिया व यौम यकूमुल अशहाद। यकीनन हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद दुनिया की ज़िंदगी में भी करेंगे, और उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे, जिस दिन ज़ालिमों को इनके उज़र और माजरत कुछ नफ़ा ना देंगे, और इनके लिए लानत होगी और इनके लिए बुरा घर होगा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत नामा अता फरमाया और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया कि वो हिदायत और नसीहत थी अक्लमंदों के लिए। बस है नबी, तू सब्र कर, अल्लाह का वादा बिला शक को शुबा सच्चा ही है। तू अपनी लग्जिशों की माफ़ी मांगता रह और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करता रह। कही अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। कितना सताए गए मेरे नबी, हमारे माँ बाप को भी सताए तुम्हें कैसा लगता है? और प्यारे नबी को जिन्होंने सताया, फिर उनके बारे में हमारे दिलों में कितनी नफ़रत होनी चाहिए और कितना गुस्सा होना चाहिए।